आरवी ने हुम कहा और बताने लगी, मिस्टर मेहरा ने मुझसे शादी सक्षम से बदला लेने के लिए नहीं की थी। मुझे भी लगता था कि इन्होंने सक्षम को धोखा देकर मुझसे शादी की है, या फिर मुझे सक्षम से बचाने के लिए। उसका असली चेहरा उनके सामने जो आ गया था, पर वो जो मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे जो दर्द तकलीफ दे रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कल सामने आई। उनको लगता है कि मैंने उनके किसी अपने को दर्द तकलीफ दी है, यहाँ तक कि इतनी कि वो मरने पर आ गया, और अब भी वो जीते जी मर रहा है, मतलब ठीक नहीं है। तो मेरे ही कारण आज उसकी जो हालत है, मेरी वजह से है, ये मिस्टर मेहरा का मानना है, पर ये हकीकत नहीं है। और वो अपना है वर्तिका। कल जाना हमने वर्तिका के बारे में, मिस्टर मेहरा हमें मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ वर्तिका एडमिट है। उन्होंने कहा कि वो मुझसे जो नफ़रत करते हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे दर्द दे रहे हैं, उसकी वजह वर्तिका है, क्योंकि वर्तिका की हालत आज जो है मेरे कारण है। मैंने उसे इस हालत में पहुँचाया, मेरे कारण उसकी दिमागी हालत ख़राब है, और वो बस मुझसे बदला ले रहे हैं, मुझे सज़ा दे रहे हैं उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं कभी। गलती से भी मैंने वर्तिका को कभी एक खरोच नहीं पहुँचाई, फिर पता नहीं क्यों उनको गलतफहमी है ऐसी। और अब तो विनीत जी भी मुझे ज़िम्मेदार मान रहे हैं, उनसे तो शिकायत भी नहीं। समझ सकती हूँ, जब बहन तकलीफ़ में हो और दोस्त कह रहा है ये लड़की गुनाहगार है, तो भरोसा भी करेगा और गुस्सा भी। विनीत जी की बहन, जिससे आप सबका खास रिश्ता है ना, मैं सिर्फ पहले वर्तिका को जानती थी और किसी को नहीं। वर्तिका से यूं ही मुलाकात हुई थी मेरी, पर अब उसकी जो हालत है, उसका कसूरवार मैं सच में नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मिस्टर मेहरा का कहना है कि वर्तिका ने मेरी वजह से सुसाइड किया था। 6 महीने पहले जिसे वर्तिका को एक्सीडेंट के चलते उसकी डेथ बताई गई थी, वो जिंदा थी और कोमा में चली गई थी, और उसके जिंदा होने की बात मिस्टर मेहरा ने सबसे छुपाई और उसका इलाज करवा रहे थे। शायद इसलिए छुपाया होगा क्योंकि कोमा में इंसान मरा सा ही दिखाई पड़ता है, सिर्फ सांसें चल रही हैं, और आप सब वर्तिका को ऐसे नहीं देख पाते। पर वो कुछ दिन पहले कोमा से बाहर आ गई और उसने मेरा नाम लिया। उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई, और अब उसकी हालत दिमागी तौर पर एक बच्चे जैसी हो चुकी है। पर अब अगर सब सही करना है, तो उसके लिए वर्तिका का सही होना बहुत ज़रूरी है, और वो सही होगी पूरी तरह से, तभी बताएगी कि मैं कैसे उसकी इस हालत की वजह हूँ, यूं भी या नहीं। सच को वर्तिका ही सामने लाएगी, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ तो भरोसा नहीं करेगा कोई मेरा। कहते हुए आरवी ने अयांश से कैसे शादी की से लेकर कल वर्तिका के बारे में पता चला था कि पूरी बात दिनकर जी को बता डाली। आप समझ रहे हैं ना आप जो मैं कह रही हूँ, नम आँखों से दिनकर जी की ओर देखते हुए आरवी बोली। दिनकर जी की आँखें नम हो गईं, उन्होंने आँखों के किनारे साफ किया और हाँ कहते हुए बोले, अब आगे क्या करना चाहती हो तुम? जो सच है वो अगर मेरे साथ देने से सामने आता है, वर्तिका के साथ साथ सब ठीक भी होता है, तो मैं साथ देने को तैयार हूँ। ये सुन आरवी मुस्कुराई, और तभी गाड़ी के ब्रेक लग गए। गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के बाहर थी। आरवी हॉस्पिटल की ओर देखते हुए बोली, हमारी मंजिल आ गई, चलिए। और दोनों गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। रात के 11 बज रहे थे। अयांश की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और वो गाड़ी के बोनट के सहारे हाथ बांधे खड़ा था। तभी विनीत हाथ में चाय का कप लेकर आ गया और अयांश के साथ ही खड़ा होते हुए बोला, चाय पिएगा? नहीं, अयांश ने कहा, इतनी भी बुरी नहीं होती तपरी वाली चाय, तुम्हारी उस महंगी कॉफी से ज्यादा अच्छा स्वाद होता है इस चाय का। विनीत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, तो तुम लो, स्वाद मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, जल्दी पियो चाय, तुम्हारे चाय के चक्कर में मैं बीच सड़क खड़ा हूँ, विनीत ने विनीत की ओर देखते हुए बोला। तो तुमने मुझे कहा था भूखा रहो, और लंच था ना, क्लाइंट के साथ खा लेते, मेरा जब मन करेगा मैं खा लूंगा। लंच और वहाँ सारा खाना वेस्टर्न था और स्वाद तो बिल्कुल नहीं, देखकर ही मन नहीं किया खाने का। जानता हूँ तुझे भूखे रहने की आदत है, मुझे नहीं। अच्छा होता तो खा लेता, ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं मिला आज, डिनर भी पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए सोचा एक चाय तो पी लूँ, अच्छी थी तभी गाड़ी रुकवाई मैंने, विनीत फिर चाय का घूंट भरते बोला। रुकवा ली ना, अब जल्दी पियो चाय, यहीं नहीं खड़ा रहना, कहते हुए आयांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तभी विनीत चाय पीता हुआ आयांश के पास आया। कमाल है ना, करोड़ों की डील साइन करके आया है फिर भी खुशी नहीं? आयांश स्टेयरिंग पर हाथ घुमाते हुए बोला, मैं खुश हूँ डील को लेकर। लगता तो नहीं रहा ना, जाहिर नहीं कर रहा अपनी खुशी। इस डील से हमारे लॉस की भरपाई ही नहीं, और भी फायदा होने वाला है, जानता है ना? बस कहाँ खोया है, काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, घर जाने की जल्दी है तुझे? क्या मतलब? मतलब कोई इंतजार कर रहा होगा ना तेरा, पहले जैसे थोड़ी है अब, अब तुम शादीशुदा हो, क्या पता मैं अभी घर नहीं लौटा कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा, ये सोच रहे होगे ना, और थोड़े से परेशान भी दिख रहे हो। ये सुन आयांश फट से बोला, मैं आज घर नहीं जा रहा, विनीत हैरान होते हुए बोला। क्यों? आज बहुत थक चुका हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, और घर गया तो जीना हराम हो जाएगा। ओ, मतलब शादी करके फंस गया, अब अपने घर नहीं जा सकता, वाह, वैसे कहाँ जाएगा, मुझे कमी है क्या जगहों की, कहीं भी जा सकता हूँ, फिलहाल ऑफिस ही जाऊँगा, कुछ अर्जेंट मेल आने वाली है वो भी चेक कर लूंगा, लैपटॉप ऑफिस में है मेरा। ये सुन विनीत हल्का सा मुस्कुराया, वो काम तो तुम बाद में भी कर सकता है, वैसे क्या जरूरत है उसे घर में रखने की, तो उसे दर्द देना चाहता है, उल्टा वो तुझे परेशान कर रही है। आयांश विनित की ओर घूरते हुए बोला, इतनी हिम्मत नहीं उसमें मुझे परेशान कर सके और मैं उसे करने दूं। एक दिन 100 दिन नहीं होते, कल या आज सुबह जो उसने किया वो ड्रामा जल्द बंद हो जाएगा। मेरी अर्जेंट मीटिंग थी आज, सो मैं उसके साथ अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहा। पर अब अगर कुछ वैसा करेगी तो जो होगा उसके लिए सही नहीं होगा। विनित कंधे उचकाते हुए साइड में चाय का खाली कप फेंका। क्या पता तुम क्या करोगे, वो क्या करेगी, अब चलो। इतना कह विनित गाड़ी में आ बैठा और बोला, घर जाने से पहले मैं दी से मिलना चाहता हूँ, देख कर आए, फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर ऑफिस चले जाना, मेरे घर तो तुम्हारा मन नहीं लगता। आयांश गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, रात को सुकून चाहिए मुझे, दिन भर साथ रहते हो इतना काफी है। ये सुन विनित ने मुंह बनाया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला वर्तिका वहां नहीं है। ये सुन दोनों के होश उड़ गए। वर्तिका क्या, वहां ना कोई नर्स थी और ना ही डॉक्टर। विनित हैरान होते हुए इधर उधर देख बोला, कहाँ है आयांश, और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आयांश इधर उधर देखते हुए बोला, कहाँ है सब, कोई नजर नहीं आ रहा है। कहते हुए आयांश ने जोर से आवाज दी, सिस्टर, डॉक्टर, डॉक्टर, सिस्टर्स। तभी विनित भागते हुए दाई तरफ गया और वापस आते हुए बोला, उस तरफ भी कोई नहीं है, डॉक्टर अपने केबिन में भी नहीं है। परेशान होते हुए, वेट, मैं कॉल लगाता हूँ। कहते हुए आयांश ने फट से अपना कॉल लगाया और डॉक्टर सिस्टर्स को कॉल लगाया। रिंग जा रही थी पर किसी ने फोन नहीं उठाया। विनित घबराया हुआ इधर उधर चल रहा था। वर्तिका को वहां न देख दोनों बेहम परेशान हो गए। विनित आयांश के सामने रुकते हुए बोला, फोन लगाया, पता चला कुछ। तभी आयांश ने गुस्से से अपना फोन जमीन पर दे मारा, कोई फोन उठा क्यों नहीं रहा है मेरा, कहां मर गए सब, दांत पीसते हुए।
विनीत डरा सा, आयांश मुझे दी के लिए टेंशन हो रही है, वो ठीक तो होगी ना, कहां है दी, बोलो ना आयांश, तुम तो कहते हो यहां कोई नहीं आ सकता है तुम्हारी मर्जी के बिना, फिर सब कहां है, कहीं दी खुद तो बाहर नहीं चली गई ना, पर तुमने तो सिक्योरिटी रखी है, फिर कैसे, वो ठीक तो होगी ना। विनीत के लगातार इन सवालों को सुनकर आयांश ने उसे कंधों से पकड़ा और जोर से चिल्लाया, बस कुछ नहीं होगा वर्तिका को, वो ठीक है, सुना। विनीत रो पड़ा और आयांश के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, तो है कहाँ, यहाँ से कैसे ही आ सकती है। तभी आयांश ने विनीत को खुद से दूर किया और बोला, सिक्योरिटी गार्ड्स बताएंगे, वो तो बाहर ही है ना हॉस्पिटल के। विनीत ने ये सुनते ही अपनी आंखें पोछी और दोनों बाहर की तरफ भागे। पर जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे तो देखा कि जो हॉस्पिटल के गेट के पास दो गार्ड्स खड़े थे वो आयांश विनीत को देख डरे सहमे से थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे लेने लगे। उनकी ये हरकत आयांश को और गुस्सा दिला देती है। वो उन पर झपटा और दोनों की कॉलर पकड़ चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है सब, डॉक्टर्स, सिस्टर्स और वर्तिका, कहाँ गए, अंदर कोई नहीं है, जवाब दो, सब कहाँ गायब है। विनीत भी आगे आया और एक गार्ड को अयान से छुड़ाकर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कौन आया था यहाँ, क्या हुआ था, बताओ, बोलो, चिल्लाते हुए। दोनों गार्ड्स आयांश विनीत का गुस्सा और चिल्लाना देख डर गए और पसीने से तरतर हो गए। आयांश के गुस्से से दोनों वाकिफ थे। तभी दोनों वो करते हुए लड़खड़ाते हुए बोलने लगे कि तभी आयांश फिर चिल्लाया, बोलो जल्दी, क्या हुआ है यहाँ, बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जान प्यारी है अपनी तो मुंह खोलो और सब बताओ मुझे, अभी के अभी। तभी एक गार्ड हकलाते हुए बोला, वो कल जो लड़की आई थी आपके साथ, आज वो फिर आई थी सर। दूसरा गार्ड, हाँ, आपके दादाजी के साथ, और वर्तिका को वो अपने साथ लेकर चले गए सर। ये सुनते ही आयांश और विनीत की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्रमशः